महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्छायाणम्, नमो लोए सौवसाहु। भूतबलि प्रणीतं तं बंधतत्व प्रकाशकं महाधवल विख्यातं महाबंधम नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंड आगम का 6 नंबर का खंड है। इसमें तृतीय अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है और हम चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 18 पर आ गए, 18। अभी हम जघन्य अनुभाग बंध के स्वामी की बात देख रहे थे। हाँ, आपका प्रश्न पूछना, माइक लगा लेना।
ये परिवर्तन प्रकृति का कल में मेरे को समझ में नहीं आया।
हाँ, परिवर्तमान अपरिवर्तमान की बात ये देखी थी हमने कि उसमें आई थी ना कल कर्मकांड में, मध्यम परिणाम तो है परंतु जो वृद्धि रूप होते रहते वृद्धि रूप हो गए
हियमान और वर्तमान वो तो
अपरिवर्तमान थे, और हियमान होते रहते हियमान होते रहते वो अपरिवर्तमान, परंतु जो पलट कर एक समय में पलट कर आ सकते हैं
तो वहाँ पे वो जो परिवर्तन एक समय में पलटना हो जाता है
होता है,
तो वहाँ पे अनुभाग भी प्रतिपक्ष का भी इतना ही बन जाएगा।
कितना बनता है उसका यहाँ विषय नहीं है।
नहीं, पर दोनों का जगह जो वहाँ पे
ये जो जितनी इसकी विशुद्धि था जितना अनुभाग बनता था तो एक समय के लिए हम ऐसा भी देखते हैं ना, एक समय के लिए असाता बन के फिर साता बन सकती है।
नहीं, पर वहाँ पे क्या होता है
इस तरह से वो परिवर्तमान
नहीं, पर सातावित देह का संकलेश में जगह नहीं होगा और असातावित देह का विशुद्धि में
मध्यम परिणाम। संकलेश में तो उत्कृष्ट होगा उसका, संकलेश में जगह नहीं कैसे होगा।
अच्छा, ये मध्यम परिणाम
दोनों का ही मध्यम परिणाम।
तो परिवर्तमान प्रकृति में जहाँ पे वो लोग अभी एक समय के लिए
एक समय के दूसरा बन के फिर इसको बन सकते हैं,
तो एक ही परिणाम से साता भी बंधेगी असाता भी, साता असाता के बाद में वो तो अपरिवर्तमान है। बाकी की 23 प्रकृति जो बताई गई है उच्च गोत्र 6 संस्थान 6 सहनंद मनुष्य गति गति अनुपुरी देव गति देव गति अनुपुरी सुभग दुर्भग आदे अनादेय और यशस कीर्ति और यशस कीर्ति वो परिवर्तमान बताई है। तो वहाँ पे दोनों का एक ही परिणाम से दोनों का बंध हो सकता है।
एक ही परिणाम से होता है ऐसा मत कहो, परिणाम में तो डिफरेंस है ही है, परंतु वो असाता का करके फिर लौट कर साता में आ सकते हैं, मध्यम परिणाम है।
तो एक मध्यम परिणाम में परिणाम का पलटना हो जाता है।
हाँ, यही तो कह रहे, लौट कर उसी परिणाम को आ सकते हैं। हमने ये भी देखा ना कुछ प्रकृतियाँ एक समय के लिए प्रतिपक्ष बनकर प्रतिपक्ष प्रकृतियों में बहुत सारी ऐसे हो सकता है।
तो वहाँ पे तो किन प्रकृति तो ज्यादा है, यहाँ पे 31 की बात उठाई है, 23 और 8 ये जो हम लोग ने कर्मकांड में तो 31 प्रकृति की
ठीक है ना। अभी यहाँ हमारी जब उत्तर प्रकृति की बात आएगी तो उसकी चर्चा करेंगे डिटेल से, उसमें अनुभाग में क्या वेरिएशन होते वो बात आएगी। यहाँ तो हमें परिवर्तमान अपरिवर्तमान क्या है वो हमने वहाँ से निकाल के देखा, वो हमारा अभी विषय नहीं है।
ठीक है, खाली आया था ना तो मैंने पूछा छोटा समझ लू ना तो मेरे को थोड़ा फर्क पड़ेगा।
अभी उसमें तो इतना ही लिखा है ना, और उसमें वहाँ अनुभाग बंध में उन्होंने इससे ज्यादा कुछ बोला नहीं है। अभी इसी में दूसरी पुस्तक में यानी अभी नेक्स्ट पुस्तक में उसकी और विशेषता हो जाएगी। हाँ देखो, ये जगन्य की बात फिर हम देखते हैं। ओघ में हमने देखे थे 3 घाती का, ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय का, जघन्य अनुभाग कम कब है, तो जहाँ मैक्सिमम विशुद्धि शपक सूक्ष्म सांप्राय अंतिम अनुभाग बन जाए। और मोहनीय का कहाँ होगा, अनिवृत्ति कर नवे के अंत में शपक में। वेदिनी और नाम के तो सम्य दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, हाँ वो परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला जी। वेदिनी और नाम कर्म का जघन्य का अनुभाग होगा। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जो लब्धि पर्याप्त देखा था हमने, मध्यम परिणाम वाला है, हाँ, और जघन्य अनुभाग बंध कर रहा है। देखो जब उत्कृष्ट अनुभाग में तत्प्रायोग विशुद्ध है तत्प्रायोग संकलेश देखते थे हम, नरकायु के लिए तत्प्रायोग संकलेश, क्योंकि अति संकलेश में तो वायु बनती नहीं, पर यहाँ तो मध्यम ही लिए क्योंकि जघन्य करना है इसलिए। अभी गोत्र
करने के लिए तत्प्रायोग नहीं बोलेंगे, मध्यम परिणाम,
मध्यम परिणाम, मध्यम परिणाम। गोत्र कर्म के जघन्य वो सातवें नरक का नरक है, उसके बाद देखी थी। उसके बाद हमने ऐसे ही कहाँ कहाँ है तो पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त रस यहाँ जहाँ श्रेणी भी है उसकी बात हमने देखी थी। फिर हमने नारकियों में देखा था तो उसमें घाती कर्मों का जहाँ विशुद्धि किसके होगी तो सम्य दृष्टि की होगी, तो चौथे गुणस्थान वाला सर्व विशुद्ध लेना है। वेदिनीय नाम और गोत्र का उग के समान ही दिया उग में, क्योंकि गोत्र का सातवें नरक का नारकी था, ऐसे नारकियों के लिए भी वही बात होगी। वेदिनी और नाम के लिए परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला दिया, सम्य दृष्टि है दोनों लेने। और ऊपर छह पृथ्वियों में जो गोत्र के लिए मिथ्या दृष्टि को लेना, मिथ्या दृष्टि को लेना परिवर्तमान पर मिथ्या दृष्टि वाला। और वेदनी और एक से छह पृथ्वी, ये तो यहाँ तक हमारी विषय हो गया था। अभी हम तीरियन चौकी मार्गना अभी यहाँ पढ़ने
जा रहे हैं। उच्च गोत्र का सम्यक होगा ना, समझ नहीं
जाएगा। छह नरकों में मिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम वाला लेना।
अच्छा चगदिया लेना,
यानी वहाँ उच्च गोत्र नीच गोत्र का परिणाम ये करने वाला बंद करने वाला ऐसा वो उसका जघन्य होगा। अब तीर्यंचों में घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का कौन स्वामी कौन है। अब तीर्यंचों में विशुद्धि कहाँ ज्यादा होगी तो संयता संयत तो साकार जागृत सर्व विशुद्ध और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर संयता संयत जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय आयु और नाम कर्म का भंग उग के समान है। वेदनीय और नाम के लिए मध्यम परिणाम परिवर्तमान, आयु के लिए भी उग के समान लब्धि पर्याप्त तीर्यंचों में वैसे ही लेना है। जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तवान मध्यम परिणाम वाला और जघन्य अनुभाग बंद करने वाला, ये तो ओक के जैसा ही घटित होता है। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंद का स्वामी कौन है। अब देखो इसमें किसको लेना है, यहाँ पंचेंद्रियों को नहीं ले, यहाँ अग्निकाई वायु काय को लेगा। हाँ क्योंकि सब देखो गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंद का स्वामी कौन है, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत। देखो अन्यत्र हमने जो पहले से छह नरक तक मध्यम परिणाम वाला लिया था वो तो निज गोत्र का भी वहाँ जघन्य और उच्च गोत्र का भी जघन्य है, पर अभी यहाँ लेना है तीर्यंचों में वहाँ निज गोत्र का जघन्य में जघन्य वहाँ होगा, क्योंकि सर्व विशुद्ध एक ही निज लेना है। तो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत सर्व विशुद्ध और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर अग्निकायक और बादर वायु का एक जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, यहाँ तो वो अग्निकायक नहीं ले सकते हैं, तो परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला, और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित। अन्यतर पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। यानी यहाँ तो उच्च गोत्र का जघन्य नहीं लेना, यहाँ नीच गोत्र का ही जघन्य लेना, क्योंकि उच्च गोत्र के जघन्य से नीच गोत्र का जघन्य बहुत अनुभाग उसका बहुत कम होगा।
अच्छा,
विशुद्धि
विशुद्धि है ना,
दोनों लेना परिवर्तमान,
परिवर्तमान है, परंतु यहाँ दोनों का जघन्य में किसका जघन्य और कम होगा, नीच गोत्र का कम होगा, क्योंकि वो अप्रशस्त प्रकृति है।
बाकी सब में हम लोग दोनों साथ में ही देखा,
दोनों का वहाँ परिवर्तमान होता है, बस इतना ही देखा था। पर जघन्य से जघन्य में अगर अल्प बहुत को लगाएंगे
हमेशा ऐसे रहता
है। हाँ, देखो देखो, जघन्य से जघन्य का अल्प बहुत वगैरह लगते हैं। यहाँ तो हमें तो किसी का भी क्यों ना हो, हम वो प्रकृति का, मूल प्रकृति का कहेंगे। वेदिनी का जघन्य या गोत्र का जघन्य कहेंगे, इतना ही कहेंगे। पर उसमें एक्चुअली देखने पर कौन सी प्रकृति वहाँ बन रही है जघन्य में, तो देखो हम, मैं आपको बताती हूँ। अल्प बहुत्व में उसी में होगा आपके, उसके अंदर अल्प बहुत जघन्य अल्प बहुत 224 आपको देखना है तो देख लो उस पुस्तक में। आप क्या कह रहे थे? ये पंचेंद्रिय त्रिविंच त्रिक है ना, संघी असंघी दोनों है।
हाँ,
संघी को ज्यादा होती है,
विशुद्धि संघी को ज्यादा होती है, तो नीच गोत्र का जघन्य वहाँ पे
होता है। अल्प बहुत्व वाला प्रायोगिलब्ध नहीं कहेंगे हम उसको, विशुद्धि के स्थान कहेंगे। एक मिनट, 224 पर शुरू हुआ था। हाँ, टू टू सिक्स पर। हाँ हाँ हाँ, गोत्र में नीच गोत्र सबसे मंद अनुभाग वाला है, उससे उच्च गोत्र का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है। कौन सा है? जघन्य से जघन्य, नीच गोत्र के जघन्य से उच्च गोत्र का जघन्य अनंत गुणा अधिक है। समझ में आई ना बात? तो यहाँ नीच गोत्र का ही जघन्य होना चाहिए। हाँ, उसमें ऐसे साता का मंद, असाता का अनंत गुणा, असाता का ही मंद है, साता का अनंत गुणा। वो अप्रशस्तों में, विशुद्धि में अप्रशस्त का और मंद हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो मध्यम परिणाम लेना है, वो कौन सा मध्यम परिणाम लेना पड़ेगा?
मध्यम परिणाम तो दोनों के लिए मध्यम कहेंगे, परंतु यहाँ जघन्य अनुभव किसका बन रहा है? तो असाता का बन रहा है या नीच गोत्र का बन रहा है, इस तरह।
तो विशुद्धि वाला स्थान लेंगे,
विशुद्ध वाला सर्व विशुद्ध, परंतु असाता बांधने वालों में सर्व विशुद्ध, परंतु उसको उसको हम क्या कहेंगे? उसको मध्यम परिणाम वाला कहेंगे। गोत्र में देखो, गोत्र में क्या लिया हमने?
मैं गोत्र की बात कर रहा हूँ।
हाँ,
गोत्र का मध्यम परिणाम में लेना पड़ेगा कि विशुद्धि वाला लेना?
मध्यम लिखा है ना यहाँ, क्या लिखा है? परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला और जघन्य अनुभाग मंद में अवस्थित। अन्यतर पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बांध का स्वामी है, परंतु वहाँ वो कौन सा कर्म बांध रहा है? तो नीच गोत्र का बंध कर रहा है।
नहीं तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि मध्यम परिणाम में जघन्य हो जाएगा, तो विशुद्धि वाला स्थान जो नीच गोत्र का जब भी बंद होता है वहाँ पे उसका और कम हो जाएगा। तो
देखो,
वो
देखो,
नहीं लेते हुए
विशुद्धि वाला, वो विशुद्धि में तो वो बंधेगा ही नहीं, विशुद्धि में तो उच्च गोत्र बंधे।
नहीं, प्रायोगिलब्धि के 24 नंबर के स्थान लेते हैं तो वहाँ पे उसका और जघन्य हो जाएगा। तो यहाँ पे मध्यम परिणाम वाला क्यों लिया?
जहाँ दोनों का ही पलटना होता है वहाँ मध्यम परिणाम वाला।
तो नीच गोत्र का जो विशुद्धि वाले स्थान में होता है वहाँ पे
वो विशुद्धि वाला आप कह रहे हैं उसको, आप उसको विशुद्धि वाला कहेंगे। पर जहाँ तक नीच गोत्र बनते हैं या उच्च गोत्र बनता है तो उसको आप क्या, कौन सा स्थान कहेंगे? जहाँ नीच गोत्र और उच्च गोत्र दोनों का बंध हो सकता है तो वहाँ मध्यम परिणाम है। आप वो तो विशुद्धि के बढ़ते हुए स्थानों की अपेक्षा उसको विशुद्धि कहें। तो जहाँ सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त बांधते हैं उसको विशुद्धि वाला स्थान कहेंगे आप? ये अपेक्षित कथन था वहां पर, वो सब जगह वो कथन मत लगाओ कि विशुद्धि है विशुद्धि है कर। यानी कौन से स्थान से कौन सी विशुद्धि अधिक है वो प्रायोगिक लब्धि के स्थान की बात अलग है, और वहां तो स्थिति बंध की अपेक्षा से वो सारे स्थान देता है। और यहाँ हम चर्चा करें अभी अनुभाग की, जहाँ उच्च गोत्र और निज गोत्र दोनों का बंध हो सकता नहीं, वहां वो अंतिम बंध है उसका, वो ठीक है। परंतु यहाँ हम किसको देख रहे हैं? परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर पंचेंद्रिय मिथ्यादृष्टि जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। अब पंचेंद्रिय तीरंच अपर्याप्त जीव में देखो, सामान्य तीरंचों में नीच गोत्र का जघन्य लेना था तो अग्नि का एक वायु का एक लिया, पंचेंद्रिय तीरंचों में जघन्य लिया था तो मध्यम परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि लिया। अब पंचेंद्रिय तीरंच अपर्याप्त जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी उनमें जो सर्व विशुद्ध होगा उनकी अपेक्षा से साकार जागृत सर्व विशुद्ध और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। अंतकुड़ापड़ी का करेंगे, स्थिति उसकी अंतकुड़ापड़ी। अब अनुभाग में उसका तो जघन्य अनुभाग हो रहा है, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? मध्यम परिणाम वाला और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। क्योंकि जहाँ अन्य प्रतिपक्ष भी बन सकते हैं, परंतु यहाँ दोनों का बंधन हो सकता है ना मध्यम परिणाम में। मान लेते हैं अभी गोत्र की बात करते, उच्च गोत्र भी और निज गोत्र भी बंधन है, दोनों बनते हैं। पर उच्च गोत्र का भी जघन्य बन सकता है, निज गोत्र का भी जघन्य बनता है। उन दोनों में अल्प बहुत अगर देखेंगे तो अनुभाग की अपेक्षा, वो विशुद्धि की बात मत करो आप, अनुभाग की अपेक्षा निज गोत्र का अनुभाग प्रकृति की अपेक्षा वो मिनिमम है, उच्च गोत्र का उसी से अनंत गुणा है। परिणाम में विशुद्ध में अनंत गुणा का डिफरेंस नहीं है, प्रकृति इटसेल्फ में डिफरेंस है। तो ये मध्यम परिणाम वाला लिया। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान, जैसे हमने ओग में देखा था ना, हाँ लब्धि अपर्याप्त जीव है, और हमारी मार्गना ही लब्धि अपर्याप्त की है। और मध्यम परिणाम वाला अन्यतर जीव आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है।
लब्धि अपर्याप्त की आयु बांधेंगे,
हाँ आयु भी उसी की बांधेंगे। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त सब विकलेन्द्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। अब ये तीरंचों की मार्गणा पूरी हो गई। मनुष्य त्रिक में सात कर्मों का भंग ओग के समान है, यानी सात कर्मों में चार घाती का तीन तो क्षपक होते हैं और मोहनीय का तो नौवे के अंत में।
पर्याप्त नहीं गया तो उसका अलग से कथन होगा। ये पंचेंद्रिय तीरंच अपर्याप्त के समान मनुष्य पर्याप्त सब विकलेन्द्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त और त्रस्त अपर्याप्त की ओर के जानना चाहिए।
एक इंद्रिय की बात करेंगे बाद में, एक इंद्रिय के बाद जब आएगी तब देखेंगे, इंद्रिय मार्गणा में देखेंगे, इंद्रिय मार्गणा में देखेंगे उसको। वो काई कॉले और एक इंद्रिय के एक साथ बताएंगे। देखो सात कर्मों का वो चार घाती कर्म तो हो गए शपक के होते, और फिर वेदनीय, हाँ वेदनीय और नाम को गोत्र को अलग लिया, मोहिनी को तो चार में ले लिया ना, एक तो दसवें में एक नौवे में, तीन दसवें में एक नौवे में, वेदनी और नाम का आयु सही सबको लिया गोत्र को छोड़कर, गोत्र बिना, हाँ गोत्र बिना सब लिया। वेदनीय को और नाम का तो हम कहाँ देखते हैं जघन्य मध्यम परिणाम वाले दोनों सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि। अब गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतन मिथ्या दृष्टि जीव। देखो यहाँ मिथ्या दृष्टि क्यों लिया, क्योंकि देखो वहाँ तो समय दृष्टि भी बांधता है, किसका असाता का जगन, समय दृष्टि के साथ असाता दोनों बनते थे, इसलिए वेदनी में तो समय दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि भी लिया। अब यहाँ समय दृष्टि तो उच्च गोत्र ही बांधेगा और मिथ्या दृष्टि दोनों को बांधेगा, तो वहाँ मध्यम परिणाम में जहाँ निज गोत्र भी बनता है उच्च गोत्र भी बनता है वहाँ निज गोत्र का मिनिमम होगा, तो वहाँ लिया मिथ्या दृष्टि को। ये कारण हमको समझ में आना चाहिए। वो गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। अब देवों में उपरिम ग्रेवेग तक दूसरी पृथ्वी के समान भंग है। दूसरी पृथ्वी क्यों, क्यों, क्योंकि पहले से छठी तक तो सामान्य कथन था ना, यानी यही है चार घाती कर्मों को तो समय दृष्टि है। उपरिम ग्रेवेग तक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ समय दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि उपरिम ग्रेवेग तक होते हैं, इसलिए वहाँ जो चार घाती कर्मों का तो समय दृष्टि को जगन्य होगा, सर्व विशुद्धि को वेदीय नाम गोत्र को गोत्र को मिथ्या दृष्टि में लेना,
नहीं नाम कर्म और वेदी
नाम और हाँ वेदनी और नाम को
समय दृष्टि
समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि और गोत्र को मिथ्या दृष्टि। समझ में आई ना बात। और आयु में तो जगन में पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त कहेंगे, यहाँ पर्याप्त की बात नहीं, पर्याप्त यानी नारके के समान ही यहाँ पर। अब अनुदिश से लेकर सर्वासिद्धि तक के देवों में वो सारे चौथे गुणस्थान वाले ही हैं, तो सात कर्मों का भंग सामान्य देवों के समान है, यानी यही अभी ये तो समय दृष्टि है ना सारे, तो सर्व विशुद्धि में चार घाती का जगन्य होगा और मध्यम परिणाम में वेदनीय का और नाम का जगन्य होगा। और गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, तो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलिष्ट युक्त, क्योंकि यहाँ उच्च गोत्र ही बनता है लगातार, यहाँ निज गोत्र बनने का सवाल ही नहीं है, तो उच्च गोत्र का जगन्य कब होगा, तो सर्व संकलिष्ट में और जगन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर जीव गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। बाकी आयु के लिए ऐसा ऐसा जगन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान वगैरह वगैरह मध्यम परिणाम वाला।
तो हम लोग उसे देखते हैं जब भी अपर्याप्त अवस्था में रहते हैं देव में वहाँ तो इसका जगन्य होता है,
वो तो स्थिति थी
अनुभाग,
ये अनुभाग में तो बहुत सोचना है अलग से। हाँ ये स्थिति तो उसके अंत कोड़ा कोड़ी से वहाँ ज्यादा है। हाँ नहीं कभी कब लगता है तो अप्रशस्त में लगता है, अप्रशस्त में अनुभाग भी ज्यादा है, संकलेश ज्यादा है ना, अनुभाग भी ज्यादा है और स्थिति भी ज्यादा है। प्रशस्त प्रकृतियों में स्थिति कम बनती है, अनुभाग ज्यादा बनता है। ये उल्टा पुल्टा सब हर एक को अलग अलग सोचना पड़ता है, ये मनुष्य त्रिक की बात हो गई ना, देवों की भी बात हो गई। हाँ अभी हम 20 पेज पर आते हैं, एकेंद्रियों में चार घाती कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, तो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत सर्व विशुद्ध जगन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर एकेंद्रीय जीव। हमने देखा ना बादर एकेंद्रीय पर्याप्तों को विशुद्धि भी ज्यादा और संकलेश भी ज्यादा है, अन्यतर बादर पर्याप्त जीव उक्त कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है, यानी सॉरी मैंने नीचे की लाइन में गई उक्त कर्म जगन, हाँ यानी चार घाती कर्म के लिए हुआ, वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म का भंग सामान्य तिर्यंचों के समान है। गोत्र के लिए अग्नि का एक वायु का चाहिए, आयु के लिए वो तो अपर्याप्त अपर्याप्त का लेना, वेदनीय नाम और गोत्र की तो बात बता दी, वेदनीय और नाम के लिए मध्यम परिणाम वाला लेना, इसी प्रकार बादर एक इंद्रिय, पहले तो सामान्य एक इंद्रियों में करने वाला तो बादर एक इंद्रिय है, बादर एक इंद्रिय मार्गणा में तो ऐसा ही कहेंगे। सूक्ष्म एक इंद्रियों में भी सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त उनको जगन्य होगा, और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। अब काय मार्गणा की बात करेंगे। पंचेंद्रियों में तो बता दिया ना, विकलेंद्रियों और पंचेंद्रियों की मार्गणा, तो विकलेंद्रियों में तो पंचेंद्रिय तीन इंच अपर्याप्त के समान था, और पंचेंद्रियों में और त्रसों में तो ओघ के समान था। अब पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर और निगोद जीवों में, यहाँ अग्नि वायु को छोड़कर की बात है। चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो साकार जागृत सर्व विशुद्ध जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर पर्याप्त उक्त जीव, क्योंकि बादर में और पर्याप्त में वो जघन्य होगा, उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। तीन कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है?
अन्य
आयु ने गोत्र को भी लेना नहीं होता, हाँ आयु को छोड़कर, क्योंकि परिवर्तमान में आयु को नहीं लेते ना। देखो इसीलिए इनकी मार्गणा अलग बनाई, अग्नि का एक आयु का एक में तो सर्व विशुद्ध कहे और यहाँ मध्यम परिणाम। तो तीन कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? यहाँ वेदनीय नाम और गोत्र लेना। तो अन्यतर परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला उक्त जीव तीन कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। अभी एक इंद्रिय कहो ये तो सारी मिथ्या दृष्टि है, इसलिए उसमें ऐसा लिखने की जरूरत नहीं थी। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तिमान, निवृत्तिमान लिखा वहाँ, निवृत्तमान था ना, तो निवृत्तमान है नहीं, निवृत्ति नहीं, निवृत्तमान था शब्द था ना, ओघ में देख हमने क्या देखा था आयु के लिए
लिखा
है। नहीं जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान, यहाँ निवृत्ति मान लिखा है, निवृत्त मान होना चाहिए। हाँ देखो आयु में भी मध्यम परिणाम लिया यहाँ पर, पर पहली कंडीशन अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान मध्यम परिणाम वाला और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर उक्त जीव, बाकी तीन में परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला लिया और यहाँ मध्यम परिणाम वाला लिया। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है,
यह तो भी जघन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त परिणाम लेना पड़ेगा,
लिखा ना
नहीं जघन्य नहीं लिखा है, अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान वहाँ पे जघन्य लिखा है।
एक मिनट, आयु जघन्य अनुकस अन्यत्र अपजत्त अपजत्तग निवृत्ति निवृत्त मान,
वहाँ पे जघन्य लिखा,
जघन्य शब्द हर जगह लिया था, इन्होंने नहीं डाला है।
तो ये पर्याप्त का होगा,
पहले उन्होंने अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान शब्द डाला था, यहाँ जघन्य शब्द डाला था, जघन्य यहाँ पे होना चाहिए। एक्चुअली हम लिखे रखेंगे अपनी जघन, यानी आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान लिखा है ना, तो वहाँ जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से शब्द होना चाहिए था, क्योंकि हर जगह उन्होंने डाला है। ऊपर भी डाला मैंने, जघन्याय लिखना पड़ेगा, 18 पेज पर जैसे लिखा है ना, ऊपर से चौथी लाइन में जहन न्याय अपजत निवृत्ति निवृत्त मानयस जहन न्याय नहीं खाली नीचे जगह ने इतना ही डाला हूँ ये आयु की बात हो गई। इसी प्रकार इनके बादर और सूक्ष्म यानी पृथ्वी कायिकों में इनके बादर और सूक्ष्म तथा इनके सब इन सब के पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए यानी बादर में अपर्याप्त सूक्ष्म में पर्याप्त सूक्ष्म में अपर्याप्त जो मार्गणा होगी उसका नाम लेना है। अग्नि कायिक और वायु कायिक जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग का स्वामी कौन है तो अन्य जीवों के समान ही होगा तो साकार जागृत सर्व विशुद्ध और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर पर्याप्त जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। ऊपर हमने जो देखा था गोत्र के लिए यानी वेदीय नाम गोत्र के लिए परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला वेदिनी गोत्र की बात है सर्व विशुद्ध तो चार धातु के लिए अन्य कायिकों की बात मैं बता रही हूँ। अग्नि कायिक वायु कायिक में गोत्र का भी क्योंकि वो निज गोत्र एक ही बन रहा है तो सर्व विशुद्ध में होगा इसलिए चार घाती कर्म जैसे ही गोत्र का लिया क्योंकि इनका तो वो प्रशस्त ही बन रहा है उनके लिए शेष कर्मों का भंग पृथ्वी का एक जीवों के समान है। हाँ आयु रह गया चार वेदनीय नाम वेदनीय और नाम का मध्यम परिणाम वाला लेना
आयु के लिए
और आयु के जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान इस तरह से एक्चुअली गोत्र कर्म की अलग है बाकी चार घाती कर्मों का भी वैसा ही था इन्होंने चार घाती और गोत्र इकट्ठा रखा और बाकी शेष का उनके समान बताया गोत्र में डिफरेंस है बाकी सब समान है ख्याल में है ना केवल गोत्र कर्म के लिए सर्व विशुद्ध कहना है
जहाँ पे नीच गोत्र बनता है वहाँ पे सर्व विशुद्ध
हाँ। अब योग मार्गणा चलेगी अपनी हमने देखा मनोयोगी वचन योगी और काय योगी में तो ओक की समान बताया था क्योंकि वहाँ क्षपक श्रेणी भी है बाकी सभी गुणस्थान भी है तो औदारिक काय योगी जीवों में सात कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का भंग ओघ के समान है क्योंकि यहाँ क्षपक प्रकृतियों का तो वहाँ ऊपर होगा यानी ज्ञान चार घाती का तो क्षपक श्रेणी में होगा क्योंकि औदारिक का योग ही है वहाँ पर और बाकी वेदनीय नाम का मध्यम परिणाम वाला है परिवर्तमान गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है। अब देखो यहाँ पर अग्नि कायिक वायु कायिक को ले लेना औदारिक कायोग में तो गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है साकार जागृत और सर्व विशुद्ध अन्यतर बादर अग्नि कायिक और वायु कायिक जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है
तो पंचेंद्रिय के मध्यम परिणाम से भी एक अग्नि कायिक का सर्व विशुद्ध परिणाम
पंचेंद्रिय कितना भी विशुद्ध हो परंतु किसका बंध कर रहा है वो नीच गोत्र का जो बंध करेगा
मध्यम परिणाम
हाँ उससे एकेंद्रिय में नीच गोत्र का अनुभाग और बहुत कम बंध
तो विशुद्धि ज्यादा ले सकते हैं
होती है विशुद्धि में उसका बंध उतना
लिया ना हम लोग
देखो उनकी विशुद्धि उससे ज्यादा होती है ऐसा कम होती है ऐसा नहीं है ज्यादा होती है ऐसा नहीं है पर इतने उनके योग्य जो विशुद्धि है उसमें वो निज गोत्र का ही बंद करते ऐसा लेना
क्या पूछा
पंचेंद्रिय निज गोत्र का बंद कैसे में करेंगे मध्यम परिमाण परिणाम में उसका जगन है और इसका विशुद्ध में सर्व विशुद्ध में जगन है।
मेरा क्वेश्चन यही है कि पंचेंद्रिय के मध्यम परिणाम में जब नीच गोत्र बनता है उससे भी विशुद्धि एकेंद्रिय
मध्यम परिणाम से इसकी विशुद्धि
ज्यादा है
उसके मध्यम परिणाम से जो उसकी थोड़ी विशुद्धि चला जाएगी, ज्यादा उसकी थोड़ी विशुद्धि होगी तो उच्च गोत्र बनेगा, ऐसा ले लो। उसकी विशुद्धि से इसकी विशुद्धि ज्यादा है मत कहो, उसकी थोड़ी विशुद्धि ज्यादा हो जावे तो उच्च गोत्र बनेगा, मध्यम परिणाम है ना, पलट कर उच्च गोत्र में चला जाएगा। और यहाँ वो तो नीच गोत्र ही बन रहा है, इस तरह से अर्थ लो।
हाँ,
नहीं तो इसे उससे इसकी विशुद्धि ऐसा मत लो। हाँ देखो, गोत्र कर्म का भी देखा ना, बादर अग्नि का एक, वायु का एक जीव गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंदी के स्वामी, औदारिक मिश्र का योगी जीव में चार घाती कर्मों के जगन्य अनुभाग बंद का स्वामी कौन है? अभी यहाँ तो समय दृष्टि को लेना पड़ेगा। औदारिक मिश्र में पहला दूसरा चौथा तीन गुण स्थान हो सकते हैं ना, ऊपर का तो लेने का जरूरत नहीं है। औदारिक मिश्र सहयोगी की तो यहाँ बात नहीं है। तो चार घाती कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार, जागृत, सर्व विशुद्ध और तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को ग्रहण करेगा, ऐसा अन्यतर तिर्यंच और मनुष्य, असंयत समय दृष्टि जी, यानी चौथे गुणस्थान वाला है और मनुष्य में जन्मा है समित्व के साथ, ऐसा लेना है। उक्त कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। तिर्यंच में भी भोगभूमि का तिर्यंच होगा ना, लग वो तो अपर्याप्त अवस्था में, औदारिक मिश्र अवस्था है उसकी, यानी वो क्षायिक करके जाने वाला समय दृष्टि है ना, ये देव आएंगे परंतु क्षायिक समय दृष्टि तिर्यंच में भी जाएगा। हम औदारिक मिश्र की बात देख रहे हैं, हमने एक दो जगह करेक्शन किया था। देखो ये 56 नंबर का जो पैराग्राफ है प्राकृत में, उसमें 1, 2, 3 चौथी लाइन वहाँ अणु कस्य लिखा है ना, उसके बाद अन्न लिखा है और उसके आगे ऐड करना है जहन्याए, वो कैसा लिखना है? 18 पेज पर पांचवी चौथी लाइन में जैसा लिखा है जहन्याए, 18 पेज की चौथी लाइन देख लो जरा, अन्न जहन्याए लिखा है ना वैसा, जहन्याए और नीचे हिंदी में भी करना है 56 पैराग्राफ छठी लाइन, आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अपर्याप्त के पहले शब्द डालना है जघन्य, यानी वो पढ़ेंगे जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से
निवृत्त,
वहां निवृत्ति मान लिखा है, वो निवृत्त मान होना चाहिए, इतना ही करेक्शन किया था हमने। विशेष बात देखी थी कि औदारिक कायोगी में तो चार घाती है, वेदनीय नाम है, तो ओके समान बताए, परंतु औदारिक कायोगियों में गोत्र का जगन्य कौन करेंगे? तो बादर अग्नि का ही, वायु का ही, वो बात हमने देखी। अब हम औदारिक मिश्र की बात देख रहे थे, तो चार घाती कर्मों में सर्व विशुद्धि किसके होगी औदारिक मिश्र में? तो समय दृष्टि की, वो भी कब? वो औदारिक मिश्र का अंतिम समय है, नेक्स्ट समय में शरीर पर्याप्ति पूर्ण करेगा उसके होगी चार घाती कर्मों का। 21 नंबर के पेज पर गोत्र कर्म का भंग एक केंद्रियों के समान है, हाँ यानी बादर अग्नि का एक वायु का एक को लेना है, उसमें भी किसको लेना है? बादर पर्याप्तों को लेना है, यानी वो लब्धिया पर्याप्त नहीं लेना, जो पर्याप्त पूर्ण करने वाला है, जो नेक्स्ट समय में शरीर पर्याप्ति पूरी करेगा उसको लेना है, यही लिखा ना। गोत्र कर्म का भंग एक इंद्रियों के समान है, इतनी विशेषता है कि तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को ग्रहण करेगा, ऐसा कहना चाहिए। ये भी औदारिक मिश्र ही उसका भी, पर यहाँ लब्धिया पर्याप्त नहीं लेना, शेष कर्मों का भंग ओघ के समान है। शेष कर्मों का यानी वेदनी और नाम के लिए परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला लेना है, और आयु के लिए जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान वगैरह लेना। ख्याल में आई बात ये? हाँ। अब वैक्रिय कायोगी जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो यहाँ विशुद्धि ज्यादा किसके होगी? सम्यक दृष्टि की। पर वो देव भी होगा नारकी भी होगा, देवों में विशुद्धि ज्यादा होगी ना?
अभी तो पक्का।
साकार जागृत सर्व विशुद्ध और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर देव और नारकी असंयत समय दृष्टि जी चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। गोत्र कर्म का भंग ओघ के समान है, वो सातवें नरक का नारकी सम्यक के सन्मुख वाला लेना। वेदनीय आयु और नाम कर्म का भंग सामान्य नारकियों के समान है, वेदनीय और नाम के लिए तो मध्यम परिणाम वाला लेना है। जिसे नारकियों में हमने देखा था ना मध्यम परिणाम वाला, वो समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों हो गए उसमें, मैंने ओग में जैसा बताया था वैसा ही हो
गया।
आयु में
जगन्य काल तो
जगन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान,
वो देवों को हमने देखा था वो काल थोड़ा छोटा है।
फिर से
देवों का निवृत्ति पर्याप्त का काल छोटा है और नारकी का बड़ा है,
सामान्य नारकियों के समान है, यह लिखा है?
नहीं नहीं, हमने पहले देखा था ना कि निवृत्ति पर्याप्त का काल देवों में छोटा है और नारकी में,
उससे कुछ लेना देना नहीं है अपन, क्योंकि वो आयु बंध के समय उसका तो कहाँ है, वो तो
नहीं जगन्य निवृत्ति से निवृत्त अपर्याप्त जीव का
अपर्याप्त नहीं पर्याप्त
मिनिमम लेना पड़ेगा निवृत्ति अपर्याप्त का।
तो देव लिखते ना यहाँ पर, यानी हम जो देख रहे हैं कि उसका पर्याप्ति का काल छोटा बड़ा,
हाँ।
उससे कुछ लेना देना नहीं ऐसा लगता है यहाँ पर, क्योंकि वेदनी आयु नाम कर्म का भंग सामान्य नारकियों के समान लिखा है। नारकी का नाम ही क्यों लेते, देवों के समान तो लिख देते ना, सामान्य नारकियों के पहले लिया क्योंकि देवों के लिए कहे तो नारकियों के समान, बात तो वही है ना। हाँ, क्योंकि नारकी की मार्गणा पहले आती है फिर देवों में नारकी के समान कह दिया, यहाँ पर भी वही समझना है। वहाँ पर भी दूसरी पृथ्वी के समान बताया कि नहीं बताया? देवों में क्या लिखा था? उपरिम ग्रेवेक तक दूसरी पृथ्वी के समान है। अब यह आगे बढ़ते वैक्रिक कायोगी हो गए ना? हाँ, वैक्रिक में तो नारकी आ गया ना, तो सातवें नरक के नारकी गोत्र के लिए सातवें नरक का नारकी लेना, बाकी सब दोनों का समान है। अब आगे बढ़ते 21 पेज पर दूसरा पैराग्राफ, वैक्रिक मिश्र कायोगी जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अब ये सम्यक्त्व के साथ आने वाला और उसके बाद शरीर पर्याप्ति पूरी करने वाला है नेक्स्ट समय में, ऐसा ही लेना पड़ेगा। तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा ऐसा साकार जागृत सर्व विशुद्ध और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर देव और नारकी असंयत समय दृष्टि जी चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अब देखो यहाँ पर भी जो निज गोत्र ही बांधता है ऐसा वो सर्व विशुद्ध वाला लेंगे सातवें नरक का नारकी। तो गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत सर्व विशुद्ध और तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा ऐसा अन्यतर सातवीं पृथ्वी का नारकी मिथ्या दृष्टि
है
ना, सातवें नरक का नारकी है। वैक्रिक मिश्र में अधिक विशुद्धि है, अब ये समय दृष्टि तो उच्च गोत्र बनेगा
नहीं,
यहाँ वैक्रिक मिश्र में कैसा होगा सम्यक्त के समय, इसमें ऐसा लेना है उसकी विशुद्धि कितनी भी बढ़े, वैक्रिक मिश्र के योग्य कितनी भी विशुद्धि बढ़े तो ये नीच गोत्र का ही बंध करेगा। आप कहेंगे सम्यक दृष्टि बांध रहा है, परंतु उच्च गोत्र का उत्कृष्ट बंध करेगा वो। हमने गोत्र की अपेक्षा बात करनी है, तो वो पर्याप्त जीवों में लगाना है, वैकृत का योग में लगाना है, तो सम्यक तो के सम्मुख वाला है, वहाँ उसकी विशुद्धि और ज्यादा है, यहाँ उतनी विशुद्धि नहीं, पर वैकृत मिश्र के योग्य। अभी हम अन्यत्र गोत्र का किस कहा लेते हैं, मध्यम परिणाम में लेते हैं, अब यहाँ और विशुद्ध हुआ और फिर भी नीचे ही गोत्र बंद है, अन्य जीव क्या कहेंगे, मध्यम परिणाम में नीच गोत्र या उच्च गोत्र बांधे, जहाँ दोनों बनते हैं। पहली से छठी पृथ्वी तक क्या था पर्याप्त जीवों में, तो मध्यम परिणामों में वहाँ जघन्य किसका हो सकता है, नीच गोत्र का भी जघन्य, उच्च गोत्र का भी जघन्य, दोनों में जघन्य में अल्पभूतव देखेंगे तो नीच गोत्र का कम है, उच्च गोत्र का अनंत गुना है। अब यहाँ क्या लिखना है, अभी सातवें नरक को छोड़ दो, वैकृत मिश्र में सातवें नरक वाले को छोड़ दो, तो उनके लिए क्या कहना पड़ेगा मध्यम परिणाम में, क्या वहाँ तो विशुद्धि होगी तो उच्च गोत्र बंधेगा, मध्यम परिणाम में उच्च गोत्र या नीच गोत्र बंधेगा, और वहाँ नीच गोत्र का जघन्य हो जाएगा मध्यम परिणाम में, पर यहाँ और विशुद्धि बढ़ी सातवें नरक के लिए है वैकृत मिश्र वाला, तब भी वो नीच गोत्र का ही बंध करता रहेगा, वो और जघन्य हो जाएगा। ये पर्याप्त जीव सम्यक्तों के सम्मुख, यहाँ तो वो देना ही नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में कोई सम्यक्तों के सम्मुख हो ही नहीं सकता, छहो पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद अंतर्मूर जाके उसको सम्यक्त हो सकता है अर्लीस्ट, इसलिए यहाँ बात किसके, सर्व विशुद्ध वाला जीव। सातवें नरक में कितना भी विशुद्धि वाला हो, मिथ्या दृष्टि है ना, तो वो नीच गोत्र ही बांध देगा, ऐसा यहाँ अर्थ लेना। अब जितना समझ में आया उतना समझ लो।
हाँ, मगर मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, कैसा अभी सबके सम्यक दर्शन हम लोग पहले से क्या देखा, देव नार की सम्यक दृष्टि है तो अंतर नहीं है कुछ, यथा योग्य उन लोग की वो सम्यक को प्राप्त करने के।
हाँ, अभी सातवें नरक में जन्मने वाला वैकृत मिश्र वाला मिथ्या दृष्टि है, अब देव या पहला नरक का नार के सम्यक के साथ भी जन्मेगा, सम्यक के साथ जन्मने वाले को उच्च गोत्र ही बंधेगा, तो उसका जो अनुभव होगा जघन्य भी क्यों ना हो, वो तो विशुद्धि में नहीं, उसके सर्व संकलेश में जघन्य ले लो, उच्च गोत्र का सर्व संकलेश में जघन्य ले लो, किसके लिए, वैकृत मिश्र के लिए, उस जघन्य से यहाँ का जो नीच गोत्र का जो जघन्य है सर्व विशुद्धि में, वो अनंत गुना कम हो, इसलिए इसको लेना।
हम जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके दूसरे तीर्थ नरक में उत्पन्न होता है मिथ्यात्व दशा में, वो भी नीच गोत्र बांधेगा,
वो भी क्या
नीच गोत्र भी बांधेगा,
नीच गोत्र मध्यम परिणाम में बन सकता है,
नहीं नहीं पर बांधेगा,
बांध सकता है ना, मिथ्यात्व में है ना वो, यहाँ मनुष्य में वो मिथ्यात्व में गया है, वहाँ नरक में उत्पन्न हुआ है दूसरे तीसरे नरक में, तो उस वहाँ पर भी उसके योग्य संकलेश विशुद्धि होते हैं, तो उच्च गोत्र या नीच गोत्र मध्यम परिणाम में बांधेगा, वो सम्यक तो होते ही उच्च गोत्र ही बांधना चालू करेगा,
और वहाँ पे सम्यक तो पर्याप्ति के पश्चात अंतर्मुख के पश्चात प्राप्त करेगा के पहले तो नहीं है,
शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता है,
नहीं शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात तुरंत सम्यक दृष्टि हो जाएगी,
सम्यक दृष्टि हो जाएगी,
तो विशुद्धि वहाँ पे ज्यादा होगी के नहीं,
अभी यहाँ विशुद्धि का काम सवाल है,
वहाँ पे नीच गोत्र मध्यम परिणाम,
वहाँ तो नीच गोत्र बनता ही नहीं है, समय दृष्टि को नीच गोत्र बनता ही नहीं है, उससे सवाल ही नहीं है। हाँ देखो, वैकृत मिश्र पढ़ रहे थे हम गोत्र का, फिर पढ़ती हूँ मैं चौथी लाइन ना, वैकृत मिश्र में गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, साकार जागृत सर्व विशुद्ध तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा, ऐसा अन्यतर सातवीं पृथ्वी का नारकी मिथ्या दृष्टि जी गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है, यानी सभी वो सर्व विशुद्ध होते हैं ना, वो संकलेश भी हो सकते हैं विशुद्ध भी हो सकते हैं, वेदनी और नाम कर्म का भंग उग के समान है, यानी मध्यम परिणाम वाला देना, समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि कोई भी हो सकता है, अरे साधन वाला भी हो सकता है देव में। आहार का योगी जीव में। अब देखो मनोयोग वचन योग तो ओके समान था, का योगी इन जनरल ओके समान था, यहाँ औदारिक औदारिक मिश्र लिया, वैकरिक मिश्र लिया। अब आहार का योगी जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है। अब आहार का योग कौन से गुणस्थान में है?
छठे।
तो चार घाती का जघन्य का भय सर्व विशुद्ध, तो साकार जागृत और सर्व विशुद्ध अन्यतर जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। शेष कर्मों का भंग अनुदिश के समान है, क्योंकि समय दृष्टि है ना, छठा गुणस्थान है, तो मध्यम परिणाम में वेदनीय नाम और
गोत्र का,
हाँ, गोत्र का तो सर्व संक्लेश में होगा,
गोत्र का सर्व संक्लेश।
हाँ, इसी प्रकार आहार मिश्र का योगी जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को ग्रहण करेगा उसके कहना चाहिए, क्योंकि इसकी सर्व विशुद्धि कहाँ है? चार घाती कर्मों के लिए। तो जब नेक्स्ट समय में शरीर पर्याप्ति को ग्रहण करेगा ऐसा ही, क्योंकि आहार का योग है तो वहाँ पर भी आहार मिश्र पहले होता है। कब तक? जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक, क्योंकि इसमें भी छह पर्याप्ति होती है।
तो ये मिश्र का योग में जब शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करने वाला है तभी उसका साकार उपयोग हो जाएगा,
तभी
साकार उपयोग हो जाएगा।
साकार तो रहता ही है ना, साकार जागृत दोनों ही हो,
नहीं तो वहाँ पे नियम से साकार उपयोग हो जाता है, क्योंकि सभी जगह अंतिम समय में बताया तो साकार उपयोग,
पर वह भी कंडीशन है वहाँ पर, और वहाँ विशुद्धि तभी ज्यादा हो सकेगी जब साकार है।
हाँ तो साकार उपयोग
अनाकार वाले को इतने विशुद्ध नहीं होंगे, हो सकता है, परंतु विशुद्धि किसके ज्यादा होगी? साकार वाले को होगी।
हमेशा मेरे को इससे क्वेश्चन आता था कि इंद्रिय के बिना इंद्रिय पर्याप्ति पूरी नहीं है तो साकार उपयोग कैसे होता
है? साकार अनाकार से इंद्रियों से क्या लेना देना है? तो जीव का परिणाम है ना।
हाँ।
इंद्रिय के बिना ज्ञान कैसा होगा ऐसा भी लगता है ना।
ये गलत नहीं, विवेक से ये गलत मान्यता जो पहले
कहीं तो, क्योंकि इंद्रिय के बिना कैसे जान सकते हैं ऐसा ही लगता है ना वहाँ पर, इंद्रिया नहीं तो कैसे जानेगा, तो उपयोग क्या होगा उसका, तो उपयोग बिना का जीव हो जाएगा। हाँ हमने पहले देखी थी ना बात, हमने वो हाथ की बात पहले, ये प्रश्न हमें भी उठा था कि जो एक हाथ प्रमाण जो सफेद पुतला निकलता है आहार का योग वाले के, तो आदिनाथ के भगवान के काल में या भी सिमंदर भगवान के कहाँ पे करोड़ करु के आयु और इतनी बड़ी हाइट है, 500 धनुष वाली, उनका एक हाथ कितना होगा, और यह महावीर के काल में एक हाथ कितना होगा? तो आत्मांगुल या आत्मा हाथ की बात नहीं है,
प्रमाण
वो तो प्रमाण की भी बात नहीं है, उच्छेद अंगुल की बात है, उच्छेद अंगुल से बना हुआ। आप अगर उसको प्रमाण अंगुल से बना हुआ कहेंगे तो प्रमाण अंगुल से ने 500 धनुष वाले को बात, तो उसका प्रमाण कितना होगा? और महावीर भगवान के काल में उनका मूल शरीर छोटा है और प्रमाण अंगुल और प्रमाण हाथ कितना बड़ा
होगा? उच्छेद अंगुल में हम लोग यव का प्रमाण देखते तो वो भी काल के प्रमाण उसके में
नहीं, नहीं यव वो तो उसका प्रमाण बताए ना, त्रुट रेणु त्रस रेणु वो सब भू भूमि का बाल कर्म भूमि का बाल वो सब बताते बताते आए हैं।
अच्छा,
हाँ उतना ही लेना उसको, जो हम उसको कहें उच्छेद अंगुल, समझते हैं ना।
हाँ,
अंगुल के तीन प्रकार बताए, कौन से? उच्छेद अंगुल और आत्मांगुल। आत्मांगुल का अर्थ क्या है? जो जिसकी बावरी होगी उसका अंगुल का जो प्रमाण है वो उसका आत्मांगुल कहेंगे। छोटे बच्चे का उंगली का कितना होगा और वो भरत चक्रवर्ती का कितना होगा? तो भरत चक्रवर्ती के शरीर के आकार की अपेक्षा जो अंगुल का प्रमाण होगा उसको प्रमाण अंगुल कहेंगे। और हमने देखा ना वो त्रुट रेणु त्रस रेणु रथ रेणु वगैरह वगैरह, फिर जघन भूभूमि के बालों का अग्रभाग उससे 8 गुना बड़ा है तो मध्यम भूभूमि के बालों का अग्रभाग, फिर जघन्य, फिर वो तो लीक फिर जू, फिर इस तरह से यव, और ऐसे आठ यवों का है वो अंगुल।
तो पुतला निकलेगा
वो हाथ, वो कौन सा है, उच्छेद अंगुल से बना हुआ जो है। कितने अंगुल
क्या देखा फिर हम लोग ने
उस, कितने अंगुलों का एक हाथ होगा बताओ। सबका समान है, यानी वो एक हाथ प्रमाण जो आहारक शरीर बनता है, भले वो आदिनाथ भगवान के काल का हो, नहीं है वो आत्मांगुल प्रमाण नहीं है।
ये कितने अंगुल प्रमाण,
कितने अंगुल का एक हाथ होता है,
बहुत बहुत बड़ा है, करोड़ों
करोड़ों का है का?
नहीं,
24 अंगुल का एक हाथ होता है ना।
अच्छा 24 अंगुल का एक हाथ दिखता है ना,
चौबीस का हो जाएगा।
24 का होता है, 3 फुट का एक हाथ लेते हैं तो बराबर है।
वो है ना, वो एक वीत दो वीत का एक हाथ वगैरह।
तो हम लोग की एक वीत होगी तो उन लोग कभी
तो हम हमारे अंगुल से हम हमारी वीत, परंतु वो तो उससे अंगुल से लगना, वो हर एक के लिए ऐसा ही। हाँ, उनका हाथ का प्रमाण वो भरत चक्रवर्ती के, वो उसकी बात नहीं है।
तो फिर आहार शरीर दिखता है ऐसा, वो निकलेगा तभी?
नहीं, वो तो सूक्ष्म है, वैकृत से भी सूक्ष्म है, धवल है तो वायु का को भी आंखा है ना, वो मुंगे के समान दिखता है क्या आपको? तेजस शरीर का वर्ण, तेजस और कारमान दोनों निकलते हैं, तेजस और कामान मरण के बाद कारमान का योग में तेजस और शरीर कारमान शरीर है, उसका वर्ण कौन सा है? अरे द्रव्यलेशा सीखे कि नहीं आपने? कौन सी है?
शुक्ल,
शुक्ल है। और वहाँ अपर्याप्त में जाके मिश्र शरीर काल में कपोतलेशा हो जाती है, और बाद में अपना अपना वर्ण ग्रहण होता है। तो हमको दिखता है क्या? आंखों से दिखती है क्या?
नहीं,
पर उसमें वर्ण नहीं ऐसा कहीं
नहीं, नहीं वर्ण है पर आंखों की शक्ति नहीं।
लाल कलर का सिंदूर तो दिखता नहीं है ना,
वो दिखेगा तो जैसे अग्नि जैसा दिखेगा, वो दिख सकता है,
वो दिखेगा ना।
हाँ,
वो नहीं, वो अपना ये पर ये
आहारक वाला, क्योंकि वैकृत से भी सूक्ष्म है। देखो सभी आहार वर्ण से बने हैं, औदारिक शरीर तो स्थूल है, औदारिक शरीर स्थूल है, परंतु फिर भी हमें कितने औदारिक शरीर वाले कहाँ इस बीच में कुछ दिख रहे हैं कि इतने पांचों स्थावर का एक जो है पूरे तो सूक्ष्म वाले तो नहीं दिखेंगे आपको। बादर भी है, अभी बादर निगो दिख रहे हैं आपको? उनका बहुत बड़ा जत्था होगा तो दिखेगा। हाँ, ऐसे यहाँ औदारिक से वैकृत सूक्ष्म है, वैकृत से आहारक सूक्ष्म। वो वैकृत वाले कभी कभी वो यानी जो दृश्यमान ऐसे शरीर धारण करेंगे तो दिखेंगे हम। देव आते हैं वगैरह, पंच कल्याणक मनाते, वो सब बातें होती नहीं यहाँ पर?
तो वहाँ पे जब विजय क्षेत्र है, मंदिर जहाँ पे है, तो वहाँ पे तो ऐसा अभी कोई भी आहारक शरीर बना सकेंगे ना?
आहारक शरीर पृथक वर्ष के बाद कोई ना कोई बनेगा, उसमें गैप हो सकता है अंतर पंचम काल में। नहीं, बंद तो हमेशा किसी न किसी को बंद की बात
है,
और उदय, उदय ने आहारक काय योग में कब प्रवर्तमान हो गया? जब किसी मुनि को ऐसा विकल्प आया तब होगा। हाँ, मुनि तो है, पंचम काल में आहारक शरीर नहीं बनता, उसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि केवली के पास मूल
नहीं।
वो गए थे परंतु वो गए थे परंतु जा नहीं सकते, ऐसी कहाँ बात है? आहारक वृद्धि अभी यहाँ इस काल में किसी को है कि नहीं है वो तो हमें मालूम। छठे सातवें तक, सातवें तक है ना, पंचम काल में सातवें गुणस्थान तक के जीव है। वैकृत शरीर बनाने वाले वो तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, परंतु आहारक रिद्धि वाले जीव पंचम काल में होते हैं कि नहीं होते वो तो देखना पड़ेगा। वो आप देख लेना कभी उसमें आहारक रिद्धि वाले, पर ऐसा कभी आया नहीं है।
मेरा एक प्रश्न है।
हाँ,
अभी आपने बताया कि बादर निगोरिया जीव दिखते नहीं है।
हाँ,
यानी उनका जो अवतारिक शरीर है वो भी नहीं दिखता है, तो उसमें तो वर्ण गंध स्पर्श रस सब है,
सब है।
तो मुझे ये कहना है जो जीव आलू में होते हैं तो उनको रस होगा कि नहीं?
उनके शरीर का है ना, शरीर का तो बिल्कुल है, पर यहाँ तो क्या है, अनेक शरीरों का कॉम्बिनेशन है वहाँ पर।
मैं समझ गया।
और वहाँ ओरिजिनली तो प्रत्येक शरीर है ना, आलू है वो प्रत्येक शरीर है, और उसके आधार से वो बादल निगोद रहे। वो प्रत्येक शरीर का ले रहे हैं कि बादल निगोद का ले रहे हैं, और प्रत्येक बादल निगोद का अलग अलग भी हो सकता
है। सब अलग अलग, ये बात मंजूर है, लेकिन उसको रस होगा तो कैसा होगा ये मेरा
वो जो जैसा होगा अभी केवल ज्ञानों ने कैसा होगा।
आप जो कह रहे कि आलू खाने में मजा आता है लोगों को, तो उसमें कैसा रस आता है?
आपको मजा आपके राग का आ रहा था। ऐसे हम किसी को भोग ही नहीं सकते। ये गुरुदेव कितनी बार कहते हैं तू राग का भोग रहा है,
राग को
अपने राग के भोग अपने पर्याय का होता है, वेदन अपने पर्याय का होता है।
नहीं पर जीव में शक्ति है ना, वो रस की,
रस को जानने की,
रस के जानने की,
जानने की,
वो
मजा आया ये कहाँ आया,
ये जान
मजा आया वो राग में आया,
नहीं जान के उसमें एकत्र कर दे के मजा आए,
वो जो मजा आया उसके वो ज्ञान और राग को मिला कर। हाँ रस की बात है, वो तो दूर से भी होता है ना, दूर से भी उसका ज्ञान हो सकता है।
कभी मारेंगे तो वो भी अच्छा ही लगता है, वो तो कभी
हाँ,
वो भी नहीं आता है, वो
चीज से नहीं होता ना, अपने स्वयं के ज्ञान की अपेक्षा से। चलो आगे बढ़ेंगे।
वो कैसा है ना, वो जो जमीन पर रहते हैं उसका टेस्ट भी हम नहीं खाते वो अलग बात है, जिसको उसका है तो दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता है को, इतना उसका
ऐसा ना, वो तो आलू हो प्याज हो लहसुन हो उसके अलग अलग टेस्ट तो है कि नहीं,
तो
उसमें जो रचा पचा
जो है तो उसका ही टेस्ट अच्छा लगता है,
वही अच्छा लगता है। और वो नहीं किसके नहीं बोला तो गुस्से से ऐसा हो जाएगा, फिर मिला जाएगा अभी दारू पीने वाले को उसके बिना चैन नहीं पड़ती, वो मांस मच्छी खाने वाले को ये क्या तुम घास फूस खाते हो ऐसा लगता है। ये उसने
हाँ
ये उसने अपने मन में ऐसा तैयार माइंड ऐसा बना लिया उसने कि इसके बिना मुझे कुछ नहीं चलेगा, उसने ऐसा मान लिया ऐसा बना लिया। लौकिक में भी देखते हैं ना,
ये तो सोचाती है कि इतना मेरे को जानने में नहीं आता है, तो ज्ञान कितना अधिक है, हमेशा मैं इससे सोचता हूँ कि ये जीव कहाँ पे पड़ा है, वे कहाँ पे पड़ा है।
कौन सा उनका ज्ञान,
मेरा ज्ञान इतना आवृत हो गया है तो ये ज्ञान की भरता आती है ना,
कहाँ आवृत हुआ, इस पर्याय में का निगोद
में, इस पर्याय में मेरी पर्याय
वही तो राग में अटके हैं, ज्ञान की महिमा नहीं आ रही, राग की महिमा आ रही ज्यादा,
नहीं पर ज्ञान के
और ज्ञान और राग मिश्रित है,
नहीं पर ज्ञान की महत्ता आती है तो राग आपको आप छूट जाता है,
छूटेगा यानी राग रहित मैं हूँ पहले इस बात को स्वीकार करना है।
वो तो स्वीकार,
मेरा स्वभाव राग रहित है और राग पर्याय में उत्पन्न किया है, एक समय का वो विभाव भाव है, कायमी स्वभाव में राग है ही नहीं, फिर भी हमें अधिकता किसकी लगती, राग की, किसी की हो, किसी को मान कषाय की मुख्यता है, किसी को क्रोध की मुख्यता है, वो मान वाला कैसा अड़े बैठेगा, मैं इसके बिना मेरा नहीं चलेगा। अभी कोई भी ले लो, उसमें अभी कषाय के इतने वेरिएशंस है, कोई किसी को लोभ है, पैसे का लोभ हो या खाने का लोभ हो, आप जो कहें ना इसके बिना नहीं चलता है, क्या है, खाने का लोभ है, यानी वो कषाय में ही, वो कषाय इतना हावी होता है, वो ज्ञान कहीं का कहीं, वो बातें तो कर रहा है ज्ञान की पर पूरे मुख्यतः वो कषाय को चली जाती
है।
वो हमेशा मैं इससे सोचता हूँ कि ये मेरी पर्याय में अभी मेरा ज्ञान कितना आवृत हो गया है जो कषाय के कारण हो गया है,
कषाय के कारण नहीं हो रहा है, आपकी मान्यता के कारण, भले ज्ञान कितना भी कम हीन क्यों न हो, वो राग से जुदा है। पहले में पहले ये डिफरेंस करना, भेद विज्ञान जो है उसकी महत्व। हमने ज्ञान को और राग को एक मेक करके जाने, वो हम तो जान रहे हैं, परंतु राग मिश्रित है तब तक वो तो मिथ्या तो अभिप्राय तो चल ही रहे ना। वो राग मैं कर सकता हूँ, वो अच्छा है मेरे लिए, मुझे ये थोड़ा कम करना चाहिए, ऐसी बातें चलती रहती
है। एकदम चलती है। मैं करती हूँ।
हाँ, कर सकते हैं।
मैंने राग कम किया, अभी नहीं है, हाँ, ये है।
यानी उसमें अच्छा लगता है, जो पहले ये था मैंने अभी वो नहीं, मैंने अभी छोड़ दिया, यानी उसी में एकत्व बुद्धि पड़ी है। वही तो, वो इतनी दृढ़ होने चाहिए कि कुछ भी, यानी पहले में पहले जिसको कहेंगे कि अनुभव के पहले भी इतनी दृढ़ता तो वो तो निर्णय में आनी चाहिए, ज्ञान में इतनी दृढ़ता आनी चाहिए, तब जाके वो तो अनुभव भी होगा ना उसमें।
गुरुदेव ने बताते हैं ये तो आज जीवना अपलखन छे।
हाँ,
वो पहले ऐसा उदाहरण देते हैं के बे बीड़ी सरखी बीड़ी ना पियो त्या सुधी
चाय बिना नहीं चाय, और रोटला और माखन क्या। आपको नहीं देते ना, घर में किसी को मिलता नहीं, ये सब खा लेते।
नहीं पर वो आधीन हो जाता है, यही तो कह रहे, राग के कारण आधीन हो जाता है, उसी समय ज्ञान आवृत होता है, ये बात पक्की है। लेकिन राग के कारण आवृत होता है ऐसा
नहीं,
ज्ञान का परिणमन अलग है, राग का यानी चारित्र गुण का परिणमन अलग है। अब हम उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। कोई बात
एक्चुअली ये सोचते तो इतने ऐसा निर्भर हो जाता है,
बिल्कुल निर्भर
कितना दोष मेरे में पड़े। अभी तक मैं निमित्त को ढूंढता था, अभी निमित्त को नहीं ढूंढते मेरे दोष को देखता हूँ। वो तो बात सच्ची है ना।
अब दोषों को देखना है तो आप पर्यायों की तरफ देखते हैं।
पर्याय
देखो, देखो वो दोष कम करने का उपाय क्या है कि दोष रहित ऐसा जो हमारा कायमी स्वभाव है, बारंबार उसकी महिमा और उसमें उसकी अधिकता लगे, उसमें मैंपना लगे, मेरे में दोष है, मेरे में दोष है, हम ये कहाँ मैंपना पड़ा है पर्याय में, ये मैंपना कहाँ हो जाना चाहिए। वो स्वभाव यानी पर्याय का ज्ञान होगा, पर्याय का यानी दोषों का ज्ञान नहीं होगा ऐसा नहीं, परंतु मैंपना कहाँ होगा वो स्वभाव में, तब ये दोष अपने आप हल्के निकल जाएंगे। हम बार बार मैं पढ़ा वो पर्याय में है, और पर्याय में इतना मैं आवृत हुआ हूँ, मैं इतना दोषी हूँ, मैं मेरे में इतने दोष है, तो मैं कहाँ चल रहा है, वो पर्याय की तरफ चल रहा है। अब ये मैं कहाँ, वो ज्ञायक में मैंपना होता चले गया, मैं तो ज्ञायक, तो उसकी अधिकता छूटती चली जाएगी।
पर मैंपना स्थापित नहीं होता है ना जब तक, कभी तक आकुलता रहती है।
बिल्कुल आकुलता है, मैंपना कहाँ स्थापित करना है आपको,
तो वो नहीं रहता है ना, कभी तक आकुलता भी बहुत हो जाती है,
होगी ही ना, राग की ही आकुलता है, आकुलता और किसकी है, राग
स्वतंत्र,
और अपना भी स्वतंत्र है, अपने भी पर्याय, समय दर्शन प्राप्त करूँ, दोष निकालू, अरे वो मुख्य को पकड़ लिया आपने, द्रव्य को ही पकड़ लिया, तो ऐसे तो विकल्प ज्यादा आएगी भी नहीं, और उससे भी भिन्नता हम जान रहे हैं, यानी कितनी निराकुलता हो जाएगी ना, मेरे को अपने पर्याय पलटाने का कोई यहाँ टेंशन है ना, पर को कुछ करने की बात है, हम दिन भर करते क्या है, तो विकल्प बिना कुछ नहीं करते,
विकल्प
क्योंकि पर का पर्याय हम कर ही नहीं सकते, फिर भी लगता है कि मैंने इतना काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब तो ये उत्पाद व्यय और गुण पर्याय की बात चल रही है ना प्रवचन सार में, तो प्रत्येक द्रव्य अपने ही पर्याय का करता है, गुण पर्याय उसके है, उत्पाद व्यय ध्रुव उसमें हो रहा है, तो परद्रव्य की वहाँ कोई बात ही नहीं, वो उसकी एंट्री ही नहीं वहाँ पर, और हमारी सारे पूरा दिन ये 24 घंटे हम किस में अटके हुए, तो विकल्पों में अटके हैं, विकल्प नहीं आएंगे वो बात नहीं, परंतु वो विकल्प मेरे से जुदे है, मैं उसको जानने वाला जुदा हूँ, और उसकी मुख्यता लगती है। तो जब तत्व ज्ञान और बढ़ेगा तो स्वभाव संबंधी विकल्प आएंगे, विकल्प नहीं आएंगे वो बात नहीं है, पर के तो विकल्प नहीं है, वो स्व संबंधी विकल्प होंगे, पर जब स्व संबंधी विकल्प है वो विकल्पात्मक चल रही है भूमिका, वो भी राग है, उससे उसमें ज्ञान अटका हुआ है उसको जानने में, तो हम डायरेक्ट जानने वाले को ही जाने, वो नहीं हो रहा है, और हम केवल विकल्प करते करते उसमें अटके। ये तो है तो सीधा रास्ता, वो तो सारा अभी प्रवचन सार जितना अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं
सरल है, मगर हम लोग को इतना हम लोग ने कठिन बना लिया है, वो हाँ, आता ही नहीं है, हाँ, ऐसा लगता है।
बहुत अच्छा है, और गुरुदेव कितना उसको स्पष्ट करके कितनी बार गोल गोल कर गोल
बाहर जाने की जरूरत है,
हरेक हरेक पेज पेज पर वो बिल्कुल अनुभव की बात करे। अभी इससे और पुण्य का उदय क्या है कि ऐसी बात इतना समझाने वाले सब सरल करके मिले हमको, फिर भी हम कहाँ अटके हैं, इसमें कितने घंटे देते हैं और बाहर कितने देते हैं,
पुण्य इसमें लगता ही नहीं हम लोग कर रहे हैं सर, वो मान्यता क्या है, इसमें पुण्य ऐसा लगता नहीं कि इतना अपनों को मिला तो इतना
इसका, और पुण्य के बाद छोड़ो पुण्य मिला ऐसा, बाकी कोई चीज अभी वो स्कूल में बच्चे के एडमिशन के लिए क्या क्या किया था
वो मिला तो लगता है कि हो
गया। अभी बाहर की कुछ बाहर से चलो झंझट अभी छोड़ दो ऐसा नहीं लगता, अभी उसी में रचे पचे उसी संबंधी विकल्प आते हैं, क्यों अश्विन में अभी धंधा बढ़ाने के विकल्प आते कि नहीं, जो धंधे में है तो उसको बढ़ाने के विकल्प आएंगे क्योंकि वहीं पर हमारे ज्यादा घंटे तो वहाँ बिताते हैं, तो उस संबंधी विकल्प चलेगी, जब धंधा कर रहे हैं तो नेचुरली वो तो उसका लाभ को बढ़ाने के हम विचार आएंगे आएंगे, दैट इज बट नेचुरल। जब हमारी प्रायोरिटी ये हो जाती है, तो अभी आप यहाँ बैठे तो आपको कितने प्रश्न उठ रहे इस संबंधी उठ रहे ना, यहाँ तो कोई धंधे के विकल्प नहीं उठ रहे, तो जहाँ आप समय दे रहे जहाँ आपका उपयोग लग रहा है वहाँ की बात सोचेंगे आप, धंधा कौन करे पहले ये नक्की करो, ये नक्की करो
अभी तो निवृत्ति होने का सोच रहे
सोच रहे
सोच ही रहे
हमको कितने मिले ऐसे निवृत्ति ले लूंगा कितने ऐसे मिलेंगे, हाँ अंकल आंटी आप जैसे हमको भी दो बेटियाँ हम भी निवृत्ति लेंगे।
निवृत्ति वहाँ से नहीं है, निवृत्ति तो कब भी होगी जब इस पे पूरा उपयोग
देखो अंदर से, देखो पहले में पहले आप स्वाध्याय बढ़ाओ तब जाके निवृत्ति अपने आप हो जाएगी
वो बार में वो ही नहीं जाएगी,
हाँ वो तो है ना उसमें, अभी हमने 75 से अभ्यास शुरू किया था, नहीं हमने शुरुआत हुई हमारे, फिर जब जब प्रवचनकार आते थे हम सबको अटेंड करते थे शिविर में जाते थे, फिर जाके 86 में नक्की किया कि अभी लेनी ही है करके, तभी लेनी थी मगर कुछ अपना व्यवस्था भी करनी थी, फिर जाके 92 में निवृत्त हुए, पर उसके पहले अभ्यास इतना बढ़ाया बढ़ गया था कि बस अभी उसके बिना चैन नहीं पड़ता, आप भी आए ना, हाँ 92 से हाँ नहीं वो बात अलग है क्योंकि हम इसकी मुख्यता से उसको सोच रहे हैं कि हमको ये निपटना है, हमको
कभी इतना हम लोग इंग्रोस हो जाते हैं उसमें, कभी कोई आता है ना टॉपिक पढ़ने में
हाँ
तो ऐसा लगता है कि नहीं वो पहले छोड़ के ये पहले मेरा
पहले कर लो,
हाँ ऐसा होता है।
अभी मैंने जीव कांड कर्म कांड वो सब भाषांतर किए ना अनुवाद, तो 3 बजे नींद खुल जाती थी क्योंकि एकांत चाहिए शांति चाहिए और फिर उसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए ना, ऐसे भी कुछ लिख दूं मैं तो, क्योंकि दिन भर तो हमारे 3.5 घंटे तो प्रवचन भी चलते थे, रसोई तो मैं ही करती हूँ बाकी घर के, तभी तो घर में कोई नौकर होते भी थे नहीं भी होते थे चलता था सब,
तो ऐसे क्यों होता है जब भी मैं घर जाता हूँ शाम को और मैं खाने को बैठता हूँ सीजन उसका फोन लेके बैठती है प्रेरणा उसका फोन, तो मेरे को गुस्सा आता है और जैसे मेरा खाना हो जाता है तो मेरे को लगता है अभी मैं कुछ शास्त्र के बारे में सोचूं, तो ये इतना गुस्सा आना भी गलत
नहीं, गुस्सा आना ये तो भूख लगती है ना तो होता है, गलत कि वो आ रहा है बस इतना, आपने जाना ना गुस्सा आ रहा है, और वो भी फोन लेके बैठते हैं वो के व्हाट्सएप पर जाते कि शास्त्र सुनते
हैं
तो उनको बोलना जरा जोर से लगाओ मैं भी सुनूं,
कभी कभी ऐसा होता है जोर से लगाओ तो मेरे को भी
खाना खाते खाते बस सुना आपके जो, हम तो ऐसे भी है ना लौकिक की बात करते, किसी को भूख लगती तो चीड़ भी आ जाती है, निमित्त निमित्तिक है उसका, पर है वैसा। हमारे भी बच्चे जब दोनों लड़कियां गुस्सा गई दूसरे यानी ये करती थी तो मैंने कुछ नहीं मैं बोलती थी, मैं पहले उनको खिलाती थी, अपने आप उनका शांत हो जाता था। तो आप अच्छे से खा लो या आते आते कुछ खा लो, ड्राई फ्रूट वगैरह, गुस्सा पहले से ठंडा हो जाए।
मैं तो अलग बात बताना चाहता हूँ कि जिस समय जो गुस्सा आना है वो नक्की है, तो बुरा है, खराब है, अच्छा है, नहीं है, ये सोचे मत, जानो बस उसको।
मैं तो इनको भी हमेशा कहती थी गुस्सा आता है ना और ज्यादा करो, मगर उसको अपना मत मानो। अभी आपको आता है ना गुस्सा, आने दो, वो मेरे से जुदा है ऐसा नक्की करो। वो अपना लगता है।
नहीं नहीं, गुस्सा करना अच्छा लगता है, इसलिए छोड़े कैसा, तो अपना घर में कुछ ये रहना चाहिए।
उनको ऐसा लगता है कि मुझे दुर्लक्ष करके वो और कहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ, ऐसा ऐसा कुछ होता
है।
आरक शरीर कितना हाथ था उसकी। अभी आगे बढ़ेंगे कारमान का योगी, एक योग मानगणना तो कंप्लीट करेंगे। देखो कारमण का योगी जीवों में, अभी यहाँ पर भी चार घाती कर्म तो विशुद्धि वाले जीव को
संगीतन कम
लगते, चार घाती कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, अभी इसको भी समय दृष्टि को लेना पड़ेगा। साकार जागृत दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग, वो सोने की बात नहीं, नींद की बात नहीं हो रही,
नहीं ये अनाकार और साकार उपयोग के
बात, ज्ञान वृद्धि वगैरह का नहीं, निद्रा प्रसाद हो सकता
है, समझे नहीं मैं, साकार नहीं वो
साकार है दर्शन ज्ञान उपयोग और अनाकार यानी दर्शन उपयोग, तो वो तो उपयोग पलटते रहते हैं ना, ये साकार यानी ज्ञान उपयोग है, जागरूक यानी वो तो निद्रा का उदय नहीं है, वो निद्रा प्रचल यहाँ हो सकती है। सोना है, अभी हम नाक बंद करके यहाँ ऐसे लुट जाते वैसा नहीं,
भर जाता है तो उसका इमीडिएटली निद्रा प्रचल का उदय हो गया।
निद्रा प्रचल का उदय मेरे ख्याल से अपर्याप्त अवस्था में नहीं है,
अच्छा
वो पर्याप्त होने के बाद होगा। हमने देखा था ना कि अपर्याप्त अवस्था में निद्रा ज्ञान वृद्धि त्रिक का उदय नहीं है, निद्रा प्रज्ञा
का है,
निद्रा प्रज्ञा का तो 12वें तक हो सकता है, अभी 12वें गुणस्थान तक कैसा वो
भी हम लोग सोते वो निद्रा प्रज्ञा नहीं, वो ज्ञान वृद्धि
वो तो है, परंतु वो निद्रा प्रज्ञा वो तो लाइट लाइट वाली है, ज्ञान वृद्धि हो गई ऐसी बात नहीं है, पर निद्रा में भी कितने वेरिएशन हो गए कि नहीं हो गए।
हम लोग सोते तो आत्मा तो कभी सोता ही नहीं है,
उसका निद्रा प्रज्ञा का उदय ने वो तो जागृत अवस्था ने उसके जो विशुद्धि या संकलेश दोनों कम हो गए।
अच्छा हम लोग सोते हैं तो आत्मा तो
हम सोते हैं, कौन सोते हैं,
वही मैं सोचती हूँ, कौन सोता है।
नहीं, नहीं,
आत्मा की वो अवस्था है ना,
उपयोग कम हो जाना वही निद्रा है ना,
वो तो डलने सा गया ऐसा। अभी गुस्सा किसको आया, आत्मा को आया कि नहीं,
आत्मा को तो ज्ञान किया थे,
नहीं वो तो
राग की पर्याय गया आत्मा की है कि नहीं, तो निद्रा वाली पर्याय आत्मा की है कि नहीं, गुस्सा आया किसको आया, आत्मा को आया नहीं, शरीर को आया, आत्मा को ही आया, वो हम आज जिस आत्मा की वो त्रिकाली स्वभाव भाव उसमें नहीं है कुछ, पर हम जो पर्याय में तो है ना है,
तो जब ज्ञान वृद्धि का उदय रहता है तभी ज्ञान उपयोग एकदम हीन होकर रहता है।
हाँ ज्ञानोपयोग यानी ज्ञानोपयोग नहीं है ऐसी बात नहीं है,
नहीं कम हो एकदम कम हो जाता है, मेरा
विशुद्धि विशुद्धि और संकलेश दोनों कम होता है, उसमें ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग दोनों ही चलते रहेगी ना, अंतर्मूर्त से तो कुछ होता नहीं ज्यादा, निद्रा का उदय भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में, निद्रा से प्रचला प्रचला से ज्ञान बुद्धि ऐसे वो पलटते रहते हैं, कोई भी एक निद्रा अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होती।
तो जो जिसको निद्रा में चलने की आदत है
वो ज्ञान वृद्धि वाला,
तो उसमें आत्मा को पता चलता है कि अभी वो जल नहीं है, वो तो
पता चलता है, उसको ये पता चल रहा है उसमें जो कुछ भ्रम चल रहा होगा वही उसके वो जो चल रहा होगा उसके हाँ, वो तो करके भी आता है ना कुछ काम
तभी आत्मा ऐसे साकार वाली नहीं होती।
यानी बाहर अन्य यहाँ क्या चल रहा है वो नहीं, तो उसे मन में जो चल रहा है वो इसी बात चल रही है। ऐसा नहीं कि कुछ गिरता है कुछ नहीं, कुछ कार्य भी करके आता है वो।
तो साकार होगा कोई कार्य होगा ना,
हाँ तो उसमें भी साकार अनाकार दोनों ही होगी ना, मन का भी कार्य चल रहा है कि नहीं वहाँ पर। चलो अभी आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना,
कार्मण का योग में जीव जागरूक है कह रहे हैं, तो इसका अर्थ ऐसा भी
निद्रा
हो सकता
भी
है क्या कि उस समय अजागृत अवस्था भी हो सकती?
बिल्कुल निद्रा वाली अवस्था भी हो सकती है। वो निद्रा कौन सी? वो निद्रा प्रचला वाली, अभी उसके योगी जैसे वहाँ हो गए। आप कहेंगे वहाँ आंखें नहीं है, शरीर नहीं है, सोने को कुछ नहीं अरे कार्मण का योग में यहाँ से जा रहा है कोई, सातवें नरक में जा रहा है कि
जा रहा है,
सोते सोते कैसे जाएगा। चलो एक पैराग्राफ पढ़ लेते। कार्मणकाय योगी जीव में चार घाती कर्मों के जगन्य अनुभाग बंधन का स्वामी कौन है? साकार जागृत सर्व विशुद्ध और जगन्य अनुभाग बंधन में अवस्थित अन्यतर चार गति का असंयत समय दृष्टि जीव, यानी उस पर्याय का उसका वो पहला समय होगा कार्मणकाय योग चल रहा है, उक्त कर्मों के जगन्य अनुभाग बंधन का स्वामी है। गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंधन का स्वामी कौन है? अब यहाँ पर वही लेना, साकार जागृत सर्व विशुद्ध। अब यह तो मिथ्या दृष्टि ही है सातवें नरक में जाने वाला, और उसके अपेक्षा से सर्व विशुद्ध जगन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर सातवीं पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि नारकी गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है, जैसे हमने वैकृत मिश्र में देखा था वैसे यहाँ पर है। शेष कर्मों के, शेष यानी वेदिनी और नाम, क्योंकि आयु तो कोई बांधता नहीं यहाँ पर, जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला सम्य दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव, जैसे अन्यत्र देखा वैसे यहाँ पर भी देख लेना। अब यहीं रुकेंगे हम। श्रीवेदी पूर्व वेद मार्गणा से शुरू करेंगे कल। शावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।